लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित प्रेरितिक आवास की लाइब्रेरी से संत पापा फ्रांसिस ने लाइव प्रसारण के माध्यम से स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया। स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi ascoltiamo l'inizio del cosiddetto discorso di Gesù. Sono le parole che rivolse ai discepoli al termine dell'ultima cena.
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज के सुसमाचार पाठ में तथाकथित यीशु के विदाई भाषण के आरंभ को सुनते हैं। ये वे शब्द हैं जिनको यीशु ने अंतिम ब्यारी के अंत में दुखभोग के ठीक पहले अपने शिष्यों से कहा था। इस नाट के समय में यीशु यह कहते हुए शुरू करते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। संत पापा ने कहा कि हमारे जीवन के कठिन पल में वे हमसे भी यही कहते हैं, परंतु हमें क्या करना चाहिए कि हमारा हृदय नहीं घबराए? हृदय क्यों घबराता है? संत पापा ने कहा, प्रभु घबराहट के समय में दो उपाय बतलाते हैं। पहला उपाय है कि यीशु कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, जो एक सैद्धांतिक अस्पष्ट सलाह के समान लगता है, जबकि यीशु ठोस रूप में कहना चाहते हैं, वे जानते हैं कि जीवन में अधिक अशांति और परेशानी नहीं कर पाने, एकाकी महसूस करने और संदर्भ के अभाव में होती है, या पीड़ा जिसमें कठिनाई परेशानी को और बढ़ा देती है, इससे अकेले निपटा नहीं जा सकता। हमें यीशु के सहारे की जरूरत है, इसलिए हमें उन पर भरोसा रखना है, अर्थात अपने आप पर भरोसा नहीं रखना, बल्कि अपना भार उन पर डालना है, क्योंकि अशांति से मुक्त होने के लिए भरोसा से पार होना पड़ता है। अतः यीशु पर भरोसा रखते हुए हम छलांग लगाएं, यह अशांति से मुक्ति पाना है। यीशु जी उठे हैं और जीवित हैं, ताकि हमेशा हमारी बगल में रहें, इसलिए हम उनसे कह सकते हैं, यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि आप जी उठे हैं और मेरी बगल में रहते हैं। विश्वास करता हूँ कि आप मुझे सुनते हैं। मैं उन चीजों को आपके पास लाता हूँ जो मुझे अशांत और चिंतित करते हैं। मैं आप पर विश्वास करता और अपने आप को तुझे सौंपता हूँ। संत पापा ने घबराहट का दूसरा उपाय बतलाया, जिसको यीशु इस प्रकार व्यक्त करते हैं,
मेरा कासा देल पादरे मियो वि सोनो मोल्टे दिमोरे, वादो प्रिपरार्वी उन पोस्टो।
मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। संत पापा ने कहा कि यही यीशु ने हमारे लिए किया है। उन्होंने स्वर्ग में हमारे लिए जगह रखा है। उन्होंने हमारी मानवता को अपने ऊपर लिया, ताकि उससे मृत्यु से परे ले सकें, एक नई जगह पर स्वर्ग में, ताकि जहाँ वे हैं वहाँ हम भी हो सकें। यह निश्चित है, जो हमें सांत्वना देता है कि हम प्रत्येक के लिए एक जगह सुरक्षित है। मेरे लिए भी एक जगह है, हम हरेक जन कह सकते हैं, एक जगह मेरे लिए भी है, हम इंतजार कर रहे हैं, हम मूल्यवान हैं, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं और उन्होंने हमारे लिए एक सुंदर एवं योग्य स्थान स्वर्ग सुनिश्चित किया है। हम ना भूलें कि स्वर्ग में वह स्थान हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम यहाँ एक यात्री हैं, हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं, अनंत जीवन के लिए। हमेशा जीने के लिए और उसके लिए जिसकी कल्पना हम अभी नहीं कर सकते, किंतु उसकी कल्पना करना और भी अधिक सुखद है कि ईश्वर के साथ और दूसरों के साथ संयुक्त होकर सब कुछ आनंदमय हो जाएगा, आंसू नहीं रह जाएगा, न शिकायत होगी, न विभाजन और न ही परेशानियां। संत पापा ने कहा कि हम किस तरह स्वर्ग पहुंच सकते हैं, इसके लिए कौन सा रास्ता है। यीशु का निर्णयात्मक वाक्यांश यहाँ है,
Io sono la via per salire in cielo, la via è Gesù e avere un rapporto vivo con lui e imitarlo nell'amore e seguire i suoi passi.
आज मैं तुमसे कहता हूँ, मैं मार्ग हूँ, स्वर्ग चढ़ने के लिए यीशु मार्ग है। यदि उनके साथ अच्छा संबंध रखना है तो प्रेम से उनका अनुसरण करना है एवं उनके बताए मार्ग पर चलना है। संत पापा ने कहा, मैं ख्रिस्ते हूँ, आप ख्रिस्ते हैं, हम सभी ख्रिस्ते हैं। हम अपने आप से एक सवाल कर सकते हैं, मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ। ऐसे भी रास्ते हैं जो स्वर्ग नहीं पहुँचाते, वे रास्ते हैं दुनियादारी के, अपने आप पर भरोसा रखने, सत्ता एवं अहम के रास्ते।
C'è la via di Gesù, la via dell'amore umile, della preghiera, della mitezza, della fiducia, del servizio agli altri.
यीशु के रास्ते हैं विनम्रता, प्रेम, प्रार्थना, दीनता, भरोसा और दूसरों की सेवा, अपने आप को नहीं बल्कि यीशु को नायक मानने का रास्ता और प्रतिदिन यह प्रश्न करते हुए आगे बढ़ना, यीशु आप मेरे इस चुनाव को क्या सोचते हैं, इस परिस्थिति में मुझे इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। यीशु से ये सवाल करना अच्छा है जो मार्ग है स्वर्ग की ओर रास्ता दिखलाने वाले हैं। मरियम स्वर्ग की रानी हमें यीशु का अनुसरण करने में मदद दे जिन्होंने हमारे लिए स्वर्ग को खोल दिया है। इतना कहने के बाद संत पापा ने स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने यूरोप एवं अफ्रीका की याद की। उन्होंने यूरोप को एकता में बने रहने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, आज मैं यूरोप एवं अफ्रीका की याद करता हूँ। यूरोप को 9 मई 1950 को शुमन की घोषणा की 70वीं वर्षगांठ पर, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ की ओर यात्रा करने की प्रेरणा मिली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे महाद्वीप के लोगों के बीच समझौता हुआ था और लंबे समय तक स्थिर एवं शांत बना रहा, जिसका लाभ आज हमें मिल रहा है। शुमन घोषणा की भावना से प्रेरणा कभी कम ना हो, अतः यूरोपीय संघ की जिम्मेदारी है कि वह सौहार्द एवं सहयोग की भावना से महामारी के सामाजिक और आर्थिक परिणामों का सामना करे। संत पापा ने अफ्रीका की याद करते हुए कहा कि 40 वर्षों पहले 10 मई 1980 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने महादेश में अपनी पहली प्रेरितिक यात्रा के दौरान साहिल लोगों के रुदन को आवाज दी थी जो सूखे की मार से पीड़ित थे। संत पापा ने युवाओं की सराहना करते हुए कहा, आज मैं युवाओं को बधाई देता हूँ जो लौदातो सी वृक्षों की पहल के साथ काम कर रहे हैं। इसका लक्ष्य है साहेल क्षेत्र में कम से कम 1 मिलियन पेड़ लगाना जो अफ्रीका को हरा भरा बना रहा है। उम्मीद करता हूँ कि इन युवाओं की एकात्मकता के उदाहरण से अधिक लोग प्रेरित हों। इसके बाद संत पापा ने माताओं के लिए विश्व दिवस की याद की। उन्होंने कहा, आज कई देशों में माताओं का पर्व मनाया जाता है। मैं सभी माताओं को कृतज्ञ एवं स्नेह से याद करना चाहता हूँ। उन्हें संत मरिया हमारी स्वर्गीय माता को समर्पित करता हूँ। उन माताओं के भी याद करता हूँ जो दूसरे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और स्वर्ग से हमारा साथ देते हैं। संत पापा ने कुछ देर मौन रहकर सभी माताओं की याद करने का निमंत्रण दिया। तब अंत में उन्होंने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Mera के मेरा यीशु रहता वहां हम मिलेंगे बादलों पे देखेगा सारा जहां नीले आसमान के पार जाएंगे उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा हर एक वादा उसका होता है पूरा उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा हर एक
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं।
लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने पास्का के पांचवें सप्ताह के सोमवार 11 मई को संत मार्था के प्रार्थनालय में प्रार्थना मिस्सा शुरू करने से पहले बेरोजगारों की याद कर उनके लिए प्रार्थना की। संत पापा ने कहा, इन दिनों में बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, कई को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा गया है क्योंकि वे नियमित रूप से काम पर नहीं रखे गए थे। उन्होंने कहा, हम इन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो बेरोजगारी के कारण पीड़ित हैं। संत पापा ने आज के सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया जहां येसु अपने चेलों के साथ अंतिम ब्यारी के समय उनसे सदा के लिए विदा लेने की बात कहते हैं, पर वे उन्हें सांत्वना देते हैं कि वे कभी अकेले नहीं होंगे, उन्हें साथ देने के लिए पवित्र आत्मा आएगा। येसु अपने चेलों से कहते हैं, तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बता दिया है, परंतु वह सहायक जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ बता देगा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। संत पापा ने कहा, पवित्र आत्मा को अधिवक्ता कहा जाता है क्योंकि वह हमारे साथ है, वह हमें पुकारता है, इसलिए हम नहीं गिरते हैं। ईश्वर ने हमारे साथ रहने का वादा किया है और वे अपना वादा निभाते हैं क्योंकि वे ईश्वर हैं। संत पापा ने कहा, पवित्र आत्मा हमें विश्वास के रहस्य में प्रवेश करना सिखाता है, वह हमें येसु के सिद्धांत को समझने में मदद करता है जिससे कि हम अपने विश्वास को गलती किए बिना विकसित कर पाते हैं। पवित्र आत्मा सिद्धांत के रहस्य को अधिक से अधिक समझने में मदद करता है। विश्वास के रहस्य की समझ उस पेड़ की भांति बढ़ती जाती है जहां पेड़ बढ़ते और लंबे होते जाते हैं और दिनों दिन अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन वे एक ही जगह हमेशा स्थिर रहते हैं। संत पापा ने कहा, सिद्धांत स्थिर नहीं रहता, वह बढ़ता ही जाता है। यह पवित्र आत्मा ही है जो सिद्धांत को स्थिर होने से रोकता है और हमारे अंदर येसु की शिक्षा की समझ को विकसित करता है। आत्मा हमें यह याद दिलाता है कि येसु ने हमसे क्या कहा था, वह स्मृति की तरह है जो हमें आत्मपरख करने और चिंतन करने हेतु जगाता है। पवित्र आत्मा जीवन यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करता है, रास्ता भटक जाने पर वह पुनः वापस लाता और सही मार्ग पर आगे बढ़ाता है। संत पापा ने विश्वासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पवित्र आत्मा ईश्वर का उपहार है, जैसा कि संत योहान के सुसमाचार में हम पाते हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और तुम्हें विवेक में बढ़ने हेतु मदद करेगा। अपने प्रवचन को अंत करते हुए संत पापा ने प्रार्थना की, प्रभु इस उपहार को रखने में हमारी सहायता कर जिसे हमने बपतिस्मा में पाया है। और विश्व के कई देशों में मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे माताओं का दिवस मनाया गया। यह हमारी माताओं द्वारा हमारे लिए किए गए सभी बलिदानों को सम्मान करने का दिन है। इस दिन संत पापा फ्रांसिस ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, आज कई देशों में माताओं का त्योहार मनाया जाता है। मैं सभी माताओं को कृतज्ञता और स्नेह के साथ याद करना चाहता हूँ। उन्हें मरियम हमारी स्वर्गीय माँ की सुरक्षा में सौंपता हूँ। हम उन माताओं को भी याद करते हैं जो स्वर्ग से हमारा साथ देती हैं। संत पापा फ्रांसिस ने एक बार कहा था कि मानवता माताओं पर निर्मित है और उनका प्यार दुनिया के लिए एक इलाज है जिसे अक्सर विभाजित किया जाता है और कड़वाहट से भर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि एक माँ की वीरता आत्मसम्मान, करुणा शक्ति और नम्रता के ज्ञान में है। संत पापा ने माताओं को शांति दूतों के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि माताएं अपने बच्चों को बिना शर्त प्यार करती हैं और सदा अपना बलिदान करती हैं। वे व्यक्तिवाद के विरोधी हैं और वे युद्ध के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने कहा, माँ मरियम ने भी कई मुश्किल क्षणों को देखा और एक अच्छी माँ की तरह वह हम बच्चों के करीब हैं ताकि हम जीवन की प्रतिकूलताओं में कभी भी हिम्मत न हारें। उधर इटालियन और वाटिकन स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जल्दी ही वाटिकन संग्रहालय को फिर से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें पहले से ही आरक्षण करना होगा। कोविड 19 प्रकोप के कारण वाटिकन संग्रहालय को 9 मार्च से बंद कर दिया गया है। संग्रहालय अपनी वेबसाइट पर पेश किए गए आभासी पर्यटन के माध्यम से केवल डिजिटल के रूप में सुलभ है। वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में वाटिकन सिटी राज्य गवर्नर के महासचिव धर्माध्यक्ष फेर्नांडो ने बताया कि आभासी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि आभासी पर्यटन कभी भी वास्तविकता का प्रतिस्थापन नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संग्रहालयों को जीवित रखने वाले पर्यटक लोग होते हैं। कला का आनंद लेने के लिए आपको अपनी आंखों और दिल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोगों के लिए तापमान रीडिंग के लिए थर्मो स्कैनर का पूरा प्रबंध है। संग्रहालय में प्रवेश केवल आरक्षण द्वारा होगा ताकि अंदर के लोगों की संख्या को प्रबंधित किया जा सके। उधर माली गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम ने कोरोना वायरस के प्रसार से बचने की आवश्यकता का सामना करने के लिए बामाको महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जीन जेरबो को 15,000 मास्क भेजा। कार्डिनल जीन ने राष्ट्रपति इब्राहिम को उनकी उदारता और मदद की तत्परता के लिए धन्यवाद दिया। 25 मार्च को देश में कोविड 19 के पहले मामले के बाद महामारी को रोकने के लिए अपनाए गए व्यवहार पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज तक माली में 704 सकारात्मक मामले दर्ज किए गए हैं और 38 मौत हुई है। और उधर कोरोना वायरस भारत में प्रतिदिन तेजी से अपना पैर फैला रहा है। अब तक कोरोना मामले के 67,152 मामले दर्ज किए गए हैं और 2,206 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।